أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولا مجلس القصة حضرت علی اسلام اشارت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ زندگی محدود ہے علم لامحدود تو یہ لامحدود علم کو ہم آدھی سے زیادہ زندگی اپنی نکال دیتے ہیں اس کے بعد پھر آتے ہیں حاصل کرنے کے لیے تو وہی مسئلہ ہوتا کہ بڈھا توتا کیا پڑھے اب نہیں پڑھ سکتا تو اس لیے جلدی آنا جو آپ آ گئی ہیں وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے لیکن کوشش کیجئے کہ بعض لوگوں کو جو مومنین ہیں ان کو تبلیغ کر کے لے آئیے کہ وہ پڑھیں ضروری ہے تبھی مولا نے کتنا اچھا کہا لگا زندگی محدود ہے علم لامحدود ہے اور یہ قرآن کے اندر لامحدود علم ہے قرآن کے علم کو وہ تو نہیں کر سکتا اس کے باوجود ہمیں کچھ نہیں پتا ہم کچھ نہیں جانتے پوچھا جائے کہ آپ بتائیے جناب قبر کے بارے میں کیا جانتی ہیں وہاں پہ کیا کیا ہوگا کس کس چیز سے بچا جائے کیا کیا جائے گا کن گناہوں سے بچا جائے نہیں پتا کتنی مجلس سے سن چکی عیسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں تو یہ تو حشر ہے ہمارا سینکڑوں سن چکے معلوم کچھ نہیں ہمیں تو کیا معلوم بچوں کی تربیت عورتوں کے علاوہ کون تربیت کرتا محلے والے تو یہ کرتے نا خان صاحب تربیت کرتا آپ کو کرنا تربیت پوچھا جائے بچوں کی تربیت کے بارے میں کچھ معلوم ہے اتنا ہی معلوم جتنا ماسی کو معلوم یہ آپ کون ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو علم لدنی جن کے واسطہ ان کے ماننے والے ہیں وہ علم کتنا ہے نا جتنا ماسی کے پاس ہے بچے کے بارے تربیت تو اتنی ہے کھلا دیں گے پلا دیں گے نہلا دیں گے دھلا دیں گے بس آگے کچھ بھی نہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا جو علم حاصل نہیں کرتا اس کے لیے کہا گیا بدنصیب ترین بلکہ مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ بدترین مصیبت جہالت ہے بدترین مصیبت جہالت ہے کون سمجھتا ہے کہ جہالت بدترین مولا مشکل کشا کا قول ہے تجلیات حکمت میں کوئی سمجھتا ہے کہ اچھا یہ جہالت جو ہے تو ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہوگی تھوڑی بہت تاکہ اب یہ کب تک بچے کم آتے رہیں گے زیادہ آتے رہیں گے اس میں کچھ چھوڑیے جو آ گیا وہ پوری بات لے کے جائے تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جنت کا راستہ کیا ہے کہ علم جنت میں سب جانا چاہتے ہیں جنت میں بھی نہیں جانا چاہتے اعلیٰ علیم میں جگہ چاہتے ہیں اس کا راستہ علم ہے وہ نہیں پتا علم نہیں حاصل کرے کبھی بھی نہیں مال کمانے کے لیے ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے پائلٹ بنیں گے امریکہ جائیں گے کینیڈا جائیں گے دنیا کے ہزار جگہ ایسے ایسے جگہ پہنچ جاتا ہے پاکستانی مسلمان پہنچا ہوا جہاں پہ آپ کو نام بھی ٹھیک سے نہیں سنا وہاں پہنچ جائے گا کمانے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے علم کا کیا بنے گا کون بتائے گا کون کہے گا کون کہے گا مولا تو کہہ رہے کہ وہ زمین سے آدھا آسمان کے راستے جانتا ہوں یعنی زمین کے بھی جانتے ہیں آسمان کے بھی جانتے تو کچھ پوچھو تو کہتے ہیں کہ تم نے اس شخص سے پوچھا جو اس سے آگاہ ہے ظاہر کس ہیں کون کر ہم آپ کے امام ہیں ہمارے امام ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے صرف نام کر مالا جپ رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں بس لوگ سمجھتے ہیں واقعی بڑی محبت کرتا مولا سے مولا بہت محب ہے مولا کہ اتنے نعرے لگا رہا تھا کہ اچھا ایک آدھ کچھ سناؤ مولا نے کچھ کہا تھا ابھی آپ کو کچھ تب ویسی باتیں بتائیں گے جو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں کیا ہے کیا نہیں کیا کوئی نہیں باتیں تو کچھ نہیں پتا مولا کی بس ہمیں سب مولا کا نام یاد ہے آگے کچھ نہیں تو نام رٹوانے آئے تھے کوئی سیاستدان ہے جو اپنا نام رٹوانے آئے پھر کیا کیا جائے پھر کیا جائے کہ سنو تم لوگ سب لوگ پڑھتی ہو نا اسکول کالج میں یا کوئی بھی نہیں پڑھتا سب نے چھوڑ دیا پڑھتے ہیں نا چلیے ٹھیک کتنی دھیرے سے جواب دیا کہ میں ڈر گیا کہ غلط سوال تو نہیں پوچھتے میں نے مولا مشکل کچھ ہی گئے قول اور بھی ہے سنیے کیا فرماتے ہیں بڑا اچھا قول ہے بہت عمدہ قول ہے کسی کے سامنے پیش کیجیے گا تو چکرا جائے گا لیکن ہم آپ کو سمجھائیں گے بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا अब आपसे पढ़े लिखे आपसे पूछा जाए कि इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे पढ़े लिखों को उनकी जहालत दबा दी, जब पढ़े लिखे तो जाहिल कैसे हैं, इनको जहालत क्यों कहा जा रहा? बहुत सारे पढ़े लिखों को उनकी जहालत ने तबाह कर दिया है ना, बहुत सारे पढ़े लिखों को उनकी जहालत ने तबाह कर दिया, ये पढ़े लिखों को जहालत कैसे तबाह करती? दीन की तालीम नहीं थी उनके पास, बहुत सारे पढ़े लिखों को उनकी जहालत ने दीन से बेखबरी ने तबाह कर दिया, और जो इल्म उनके पास था वो उनके कुछ काम ना आया, जो इल्म उनके पास था वो उनके कुछ काम ना आया। कौन सा इल्म था? सारा इल्म था, डॉक्टर भी थे, पीएचडी भी किया हुआ था उन्होंने, इसमें भी एमए किया था, उसमें वो किया था, ये किया था, वो इतनी डिग्री, जैसे डिग्री बढ़ती जा रही वैसे मौज जो है टेढ़ी होती चली जा रही, इनका दिमाग ख़राब होता चला है, तो पता नहीं क्या है। जो इनके पास इल्म था कुछ काम ना आया था, कौन सा इल्म काम आएगा? दीन का इल्म काम आएगा, दीन का दुनिया के इल्म जो अगर है बहुत भी है, बहुत भी फ़ायदा है, मिसाल के तौर तो आँख बंद हुई ख़त्म, वो इल्म तो साथ नहीं जाएगा, लेकिन दीन का इल्म साथ जाता है। मौलाना मुस्लिम कुशा कहते हैं कि हर चीज़ साथ नहीं आती, लेकिन इल्म जो है दीनी इल्म जो है वो कफन के साथ साथ जाता है, बताइए इतनी ज़बरदस्त चीज़ है दीनी उलूम जो है कफन के साथ साथ जाता है, जो जो चीज़ कफन के साथ जाएगी ना अम्मा जाएंगे ना अब्बा जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, हमारे अमाल जाएंगे और हमारा इल्म जाएगा, तो इल्म जाएगा तो हमें बहुत है, यानी बूढ़ी अम्मा को हिल क्या अम्मा क्या पका बेटा, दो तीन ही हदीसी याद हो जाए, हम तो रोज़ाना एक हदीस याद करते बेटा, याद हमारा कब पता नहीं किस दिन मर जाए हम, है ना, ये कहे वो तुम, लेकिन नहीं हर बात में डर रहा है नहीं डर रहा, कुछ कर रहा कुछ नहीं, इल्म हासिल करने का कोई बात बताई नहीं गई किसी को, नहीं बताई गई तो उसको शौक़ भी नहीं शौक हो तो मौला लोगों को कोई बात पेश की जाती है उसको यकीन तो होता हो तो उस वक्त गर्दन हिला के हमें यकीन है, लेकिन तौफीक नहीं मिलती कि अमल करें, क्योंकि सच्चा यकीन नहीं होता तो तौफीक मिले। तुम खुश नसीब बन ही नहीं सकते, मौला मुश्किल को कॉल, तुम खुश नसीब बन ही नहीं सकते जब तक इल्म ना हासिल करो। तभी तो कह रहे जहल बदतरीन बदतरीन मुसीबत है, उफ तो हुआ, इनसे आधा भी कोई जानता होगा कि क्या चीज़ मुसीबत है, वो कैसी मुसीबत है। अगर खाली सपोज कर लिए किसी दिन, यानी आप कहिए किसी दिन कि बच्चियां जमा हो एक जगह आती हैं, सब जमा होती हैं, वो शौक़ जाहिर है, आप सिर्फ ये बताइए इल्म दीन हासिल करने का क्या क्या सवाब व फ़ायदा बताया गया है, क्या सवाब बताया गया, एक पूरी क्लास इस पर लीजिए, पूरी क्लास ली जा सकती है, ये समझ लीजिए, सिर्फ इल्म दीन हासिल करने के सवाब पर और दूसरी आगे की चीज़ें नहीं, क्या सवाब क्या मिलेगा, यानी अल्लाह क्या आप यहाँ आई तो क्या सवाब दे, आप यहाँ पे आई तो आपके पैर के नीचे फरिश्तों ने खुश होकर पर बिछाया, आपको पता था? यकीन है?
यकीन है सर।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहते हैं हिलाओ, यकीन है, जल्दी बैठ गए, जब अल्लाह उसका रसूल कह रहा है तो यकीन है। अच्छा दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहें दिखाई तो ये लोग भी नहीं दे रहे, करामन के हस्बैंड कहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन है अल्लाह कहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन है, यहाँ है, हर जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं कि यहाँ है वहाँ नहीं, नहीं हर जगह है, एक ही वक्त हर जगह। फरिश्तों ने पर बिछाया था ना, आप खुश फरिश्तों ने खुश होकर पर बिछाया कि तुम्हारे रास्ते में, जैसे कि जो काम करने के लिए होते जो उनको अवार्ड वगैरह मिल रहा होता उसका फिल्म उनका अवार्ड, तो रेड कारपेट बिछाया जाता उस पर चलते हुए आते हैं, चलती हुई आती हैं, तो आपको रेड कारपेट नहीं बिछा गया, आपके फरिश्ते पर बिछा रहे हैं खुश होके, अपना सोचें ये आपकी क्या वक़्त है, और अल्लाह कह रहे तो सही, रसूल्ला कह रहे तो सही, बिल्कुल सही, फिर हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा कि नज़र आ तो रहा, कहीं कैसे कर वैसे ही नज़र आ रहा जैसे जो वहाँ मेराज को तो नहीं गए, अल्लाह ने जो कहा वो ऐसा वैसा नहीं माना, बल्कि अल्लाह के रसूल कहीं से आ रहे थे, आ रहे थे रास्ते में, यहूदी कुछ घोड़े लेके जा रहा था मदीने फरोख करने के लिए, तो रसूलल्लाह को एक घोड़ा अच्छा लगा उस पर से, तो कहने लगे ये घोड़ा मुझे बेच दे, उसका हाँ ये पैसे हैं ये ले ले, कहते मदीने चलो पैसे देते हैं। कहा ठीक, बहुत सौदा हो गया। मदीने आए, रसूलुल्लाह पैसा ला के उसको देने लगे तो उसने घोड़ा थोड़ी सी ज़्यादा कीमत मिल रही थी बेच दिया जल्दी जल्दी। कहा हमारा तुम्हारा तो सौदा तय हो चुका था, फिर तुमने इसको क्यों भेजा? कहते क्या सबूत है कि हमारा आपको कोई आपके पास गवाह है? अच्छा, एक मुसलमान बोला यहाँ हमारा इसका घोड़े का मामला तय हो चुका था, क्या तुम गवाही दोगे? कह रहे अल्लाह के हम थे ही नहीं, कैसे गवाही दें? अल्लाह के रसूल हम वहाँ थे नहीं तो गवाही कैसे दें? सही कहा ना उसने? अब आप कुछ ना बोले, आज के बाद से आप बोलिएगा नहीं बिल्लू खा नहीं नहीं बताओ तो छोटी बच्चों से पूछ लो ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। तुम गवाही दोगे? कह रहे हम थे ही नहीं वहाँ। कहा अच्छा ठीक है जाओ। दूसरा गुजरा उससे पूछा तो गवाही हो? तो हम थे ही नहीं। तीसरा गुजरा, बाद रवायतों में सलमान फारसी गुजरे, बाद रवायतों में कि मौला अली गुजरे। कहें यहाँ आओ, ऐसे 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 ये मसला है, तुम मेरी गवाही दोगे? कहें जी दूंगा। कहें क्यों? तुम तो वहाँ नहीं थे। कहें जन्नत हमने नहीं देखी, दोजख हमने नहीं देखा, समझा? बोले सरा था हमने कुछ देखा नहीं, आपने कहा हमने मान लिया, तो इसकी क्या हैसियत? तलवार निकाली अभी इसकी गर्दन उड़ा देते हैं। तो आप बताओ जो हमने कुछ जन्नत दोजख देखी है? तुम्हें क्यों हर वक्त अम्मा कह रही जहन्नुम जही हो तू? हर वक्त जहन्नुम बेचती रहती, जरा खफा हो जाती किसी से। जब तुमने देखा ही नहीं तो कैसे पता जहन्नुम है? जहन्नुम तो है ही नहीं, देखा नहीं। हर चीज़ हमने मान लिया कि ये ऐसा ऐसा जो रसूलुल्लाह कह रहे सब माने, गए भी आए भी, कैसे कुंडी हिलती रही है, कैसे पानी जाता रहा वगैरह, जितना कुछ वहाँ पे हुआ सब उन्होंने बयान किया। गुजर रहे थे, एक फरिश्ते को भी देखा कि उसके हज़ार हाथ हैं, हर हाथ में हज़ार हज़ार उंगलियाँ हैं, उसमें कुछ गिन रहा, ये कर रहा वो कर रहा। जिब्रील से पूछा जिब्रील ये क्या हुआ? हमने तो नहीं देखा, जो बताया गया वो हम बता रहे। जिब्रील से पूछा ए जिब्रील ये क्या करे? अल्लाह के रसूल आप ही पूछती है। पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? कह पानी के कतरे गिर रहे अजल से, यानी जब से दुनिया बनी तब से पानी के कतरे गिरने, रेगिस्तान में कितने गए, बियाबान में कितने गए, आबादी में कितने गिरी, जंगल में कितने गए, कब्रिस्तान सब सबका हिसाब सुभान अल्लाह के अल्लाह ने तुम्हें वो दिया। कहें हाँ अल्लाह के रसूल के एक चीज़ ऐसा उसका हिसाब ही नहीं कर सकते। कह रहे वो क्या चीज़? कह रहे आपकी उम्मती जब एक जगह पर जमा हो गए, आप पर दुरूद पढ़ते हैं, उसका हिसाब सवाब का हिसाब मेरे पास नहीं, वो अल्लाह ही जानता। दुरूद की किताबों में लिखा हुआ सारा, तो उन्होंने तो देखा नहीं था, ना रसूलुल्लाह को बात करते देखा, ना कुछ करते देखा, कैसे पता थी? हज़ार हाथ नहीं देखा, हज़ार उंगलियाँ नहीं। भाई जो कह दिया तो मान गए कि हाँ सही, इसी तरह से जो कह रहे हैं उसको मान जाओ, बगैर इल्म के तुम जो है खुशनसीब नहीं बन सकते। मान जाओ कि जो कह रहे हैं सही कहे। अगर वो कह रहे हैं कि सबसे बदतरीन मुसीबत जो है वो जहालत है, तो मान जाओ, क्योंकि ये कहाँ कहाँ नुकसान पर, कौन सी बदतरीन का मौला मुश्किल गुशा कह रहे हैं? ये कैसी बदतरीन है कि दुनिया में तो नुकसान पहुँचाए ना पहुँचाए, कानून को कहाँ दुनिया में नुकसान पहुँचाए जहालत ने, फिरौन को जहालत ने कहाँ नुकसान पहुँचाया, लेकिन उसके बाद है जहालत। तो कह दिया तो कह दिया कि जहालत बदतरीन मुसीबत। अब ये मुसीबत कहाँ कहाँ आएगी दुनिया में? दिन ही कितने होंगे, कितने दिन की ज़िंदगी होती है दुनिया की? चार दिन की ज़िंदगी कितने बहुत जीता, 70-80 साल के बाद तो फिर पकड़ा के लाए जाने लगते, फिर तो ज़िंदगी बेकार हो जाती, फिर सांस ले रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं, कोई मज़ा ही नहीं, न खाने में न पीने में न कुछ किसी चीज़ में। तो क्या वो दुनिया की ज़िंदगी थोड़ी, आखिरत की ज़िंदगी के इन्फिनिटी ईयर, कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी आखिरत में मिलेगी। अब हमें क्या पता कि बदतरीन मुसीबत है कहाँ कहाँ में भुगतना पड़ेगा, इन्फिनिटी ईयर में कहाँ कहाँ भुगतना पड़ेगा? क़यामत के दिन भुगतना पड़ेगा, बर्ज़ख में भुगतना पड़ेगा, पुलिस रात में कहाँ कहाँ भुगतना पड़ेगा। लेकिन बदतरीन मुसीबत है भाई, मान जाओ कि बदतरीन मुसीबत है। अभी जो कोरोना आया शोर मचाए टीवी के बाद, खूब शोर मचाए, तो हर आदमी जो है वो डर गया कि नहीं डर गया? ये कह रहे हैं 1400 साल से इनका एक दफ़ा का कहना लोगों का 1 करोड़ दफ़ा कहने से ऊपर है, लेकिन कोई नहीं मानता, ये कोई नहीं मानता। ये सब वही है, बज़ाहिर नज़र आने वाली चीज़ें जो हैं उसी को मानते हैं, کچھ نہیں مانتے، جبکہ قرآن نے مومن کی تعریف، پہلی تعریف قرآن میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین کی پہلی تعریف کیا بتائی؟ متقیوں کے لیے ہدایت کتاب ہے، جو غیب پہ ایمان لیتے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، پہلی لائن جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی تعریف جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نہیں غیب ہمیں نہیں دکھائی دے رہا، اس پہ ایمان لاتے ہیں، کے لیے جو لکھا ہوا ویسے زبانی تو ابھی اور بولیں دیکھتے ہیں، جو لکھا ہوا وہ سناتے ہیں۔
سر تھوڑا سا ڈانٹ لیجیے،
ہیں
تھوڑا سا ڈانٹ لیجیے
کس کو، اس سے کیا ہوگا؟
اچھا لگتا ہے ہمیں آپ کا ڈانٹنا،
وہ صحیح ہے، آپ کا آپ کی محبت ہے، ڈانٹنا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ سب یہ جتنی چیزیں ہم نے پیش کی، ڈانٹی تو پیش کیا کہ جب بوڑھی ہو جاؤ گی تب تو کیا فائدہ، اگر یقین ہوتا، یقین ہو جاتا تو بوڑھی عورتیں بیٹھی پڑ رہی ہوتی۔ وہ رسول اللہ کا قول بھی اچھا ہوا آپ نے یاد کہا تو مجھے یاد آ گیا، رسول اللہ کا قول ہے کہ بوڑھا علم حاصل کرنے میں شرم کیوں کرتا ہے، جب وہ روٹی کھانے میں شرماتا نہیں تو علم حاصل کرنے میں کیوں شرم کر رہا ہے؟ بات تو صحیح ہے، بوڑھا تو ہو گیا تو اب روٹی تو کھا رہا ہے، اس میں شرم نہیں آ رہی، لیکن علم حاصل کرنے میں شرم کر رہا ہے۔ ماں کی گود سے قبر تک، کہا قبر تک، بہت بڑا قول ہے، ماں کی گود سے قبر تک، یعنی قبر تک جانے میں کیا مطلب، یعنی جتنی سال کی بھی عمر قبر میں پہنچنے سے پہلے پہلے ہو جائے تب تک تمہیں علم حاصل کرنا ہے، یہاں تک کہ شیعہ قوم تو وہ ہے کہ جن کے یہاں قبر میں بھی علم دیا جاتا ہے، ہیلو، شیعہ قوم کو قبر میں بھی علم دیا جاتا ہے، اللہ میرا پالنے والا، یہ اللہ رسول قرآن سچ ہے، افسرات سچ ہے، اور یہ میزان سچ ہے، سب کچھ سکھایا جا رہا تھا وہاں پر۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ پھر فرشتے کہتے ہیں سب تو اسے بتا دیا گیا، اب چلو، اب کیا پوچھے، سب تو اس کو بتا دیا گیا، تو وہاں بھی پڑھایا جاتا ہے، ہمارے یہاں پڑھائی اتنی بہترین چیز ہے کہ ماں کی گود سے قبر تک، ماں کی گود میں کیا پڑھے گا پتہ ہے؟ عورتوں کو پڑھا، ماں کی گود، آپ کی گود ماں کی گود بنے گی، ہماری ہمارے ابا کی گود تو نہیں کہا گیا، ہماری تو نہیں، آپ کی گود، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کہاں معلوم، یہ کس کی ذمہ داری، یہ آپ کی بھی ذمہ داری، ڈانٹنے کو کہا نا آپ کو، یہ آپ کی ذمہ داری، یہ آپ کی ذمہ داری، یہ معاشرے کے لوگوں کے چہرے تو انسانوں کے سے ہوں گے لیکن دل شیطان کیسا ہوگا، لوگوں کا خون بہائیں گے اور باز نہ آئیں گے، سنت ان کے نزدیک بدعت ہوگی، بدعت سنت قرار پائے گی، سنت بدعت قرار پائے گی، تو اور کیا ہوگا؟ تو صاحب نے پوچھا الگ رسول کیا وہ لوگ بت پرست ہوں گے؟ کہ ہاں، درہم و دینار ان کے نزدیک مثل بت ہوگا، آج آپ کے یہاں سب کی بڑائی جو ہے، سب کی تعریف جو ہے، سب کی عزت اکرام جو ہے پیسے کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے نا، سارے عزیز رشتہ دار سب یہ پیسے کی وجہ سے، تو کیا درہم دینار ان کے نزدیک مثل بت ہوگا؟ عورتیں ان کی زیب دنیا کی طرف مائل ہوں گی، لڑکے ان کے ترویج یعنی کھیل تماشے کی طرف ہوں گے، پھر کیا؟ بزرگ ان کے نہ امر بالمعروف کریں گے نہ نہر منکر، آ گیا، یعنی بزرگوں کی ضروری کہ امر بالمعروف نہر منکر کرے، اس کا مطلب کہ وہ اتنا پڑھ چکے ہوں گے کہ وہ امر بالمعروف نہر منکر کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے روکیں گے، اتنا پڑھ چکے ہوں گے بزرگ، ان کے نہ امر بالمعروف کریں گے نہر منکر، اور یہ لوگ اپنی قبروں میں خیر سے مایوس ہوں گے۔ ارے باپ رو، قبر کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں، بہت خوفناک ترین جگہ ہے قبر، اگر حالات، مولا وشنو غصہ کہتے ہیں کہ اگر بتا دیں تمہیں، بتا دیں تو تمہاری ہڈی جو گوشت کو چھوڑ، گوشت جو ہڈی چھوڑ دیں گی، اتنی خوفناک جگہ ہے۔ کتنا آرام سے بے فکری کے ساتھ پوری زندگی گزارتا آدمی، اس کے بعد مر جاتا ہے، تو اب جو کچھ ہو رہا وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا، کہہ بھی نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا۔ جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں، جو تھوڑا سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ روتے ہیں، پیٹتے ہیں، مختلف عالموں سے باتیں کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کریں ابا کے لیے، اماں کے لیے کیا کریں، ان کے لیے کیا کریں، وہ سینسیٹیو ہیں، ذرا اچھے ہوتے ہیں بچے، اکثر فون آتا رہتا ہے ایسے بچیوں کا، بچوں کا، تو یہ پوچھا کرتے ہیں، بتا ہی نہیں سکتے، زندہ تو کچھ کریں گے نہیں، مر جائیں گے تو پھر کون کرے گا؟ کہنا وہ وہی کرے گا، کوڑا لے کے گرد لے کے آئے گا مارنے کے لیے، اب جو کچھ کرنا اسی کو کرنا، اب اسے کیا کرنا، तुम्हें जो करना था वो तुमने कुछ किया नहीं, तो बुजुर्ग उठ के हमारे बिलबारू हुनैर मुड़की करेंगे। आपको सबको कहना चाहिए पढ़ो पढ़ो, घर के अंदर किताबें हैं, किताबें रखी गई घर में हैं, किताबें हदीसों की किताब है, बच्चे की परवरिश की किताब है, किस चीज़ की किताब है, देखिए हम आपको दिखाते। ख़ानदान के अखलाक, ये ख़ानदान के अखलाक में क्या चीज़, ख़ानदान के अखलाक में शौहर और बीवी के सिलसिले में जितनी गुफ्तगू हुआ अभी सुनाते, इसकी हदीस भी है हमें लाए हैं सुनाते। कुरान कबीरा ख़ानदान आइन आइन तरबियत, इन्हीं की लिखी हुई आइन तरबियत भी, ख़ानदान की आइन तरबियत है, कैसे तरबियत की जाए बच्चों की, तो सबको मालूम होना चाहिए, बचपन से हमें पता होना चाहिए कितनी चीज़ खेलते 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 दौड़ते दौड़ते चलते रहते, अम्मा जब बात कर रही हूँ अब्बा जो बात कर रहे हैं तो कान में आवाज़ पड़ती है ना, कितनी चीज़ें मुझे याद है बचपन की, ये कहा जा रहा था ये कहा जा रहा था ये कहा जा रहा, तो क्यों नहीं हदीसें क्यों नहीं गई जाती कि हमें बचपन से, हम यहाँ पर बड़े जो होते कहते हमें बचपन ये वाली हदीस याद, जो चीज़ याद है वो ये, हमारी वालदा कहा करते गाना सुनना हराम है, गाना सुनना हराम है, एक जमाना यह भैया बहुत पहले की बात बता रहे हैं, वो बहुत पहले में वो भी नहीं, इतने पहले की है कि जनाब फिरौन के ज़माने की बात, कहते दर और दीवार से गाने की आवाज़ें आएंगी, तो हम लोग छोटे छोटे से कान दीवार से लगा सुनते हैं, हमें तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, अम्मा पता नहीं कहाँ से कह रही, उस ज़माने में दर और दीवार से आएगी तो किसी ने बताया होगा ना उनको, उनको कहाँ से पता, तो सारी चीज़ें जो चीज़ बताएगी सुनी वो मैं मुझे याद, जो चीज़ नहीं सुनी बहुत सारी चीज़ें सुनी होनी याद होनी चाहिए, तो कुछ भी नहीं याद, कुछ सुना घर में बात ही नहीं होती, हदीस हदीस बात करो दूसरी बात बदल के आप दूसरी बात कर लेंगे, अच्छा वो पूरी पूरी हदीस तो सुन ले, दिलचस्पी नहीं, दिलचस्पी ख़त्म हो गई, अल्लाह के रसूल के कलाम से बेहतर, आइमा तारीन के मासूमिन के कलाम से बेहतर भी कोई कलाम होगा, अगर वो सुना रहे होते तो दिलचस्पी बढ़ती कि आगे का भी सुने क्या कहा क्या कहा, ताज्जुब हो रहा होता, उस दूसरी दूसरी तरफ बात करने लगते। पैदाइश के दिन से लेकर जो बाज रवायतें हैं कि हमें बहुत ताज्जुब हुआ था पढ़ने के बाद, कोई शख्स जिस दिन पैदा हो तो उस दिन से लेके मरते दम तक मुंह के बल अल्लाह के तार पे घसीटा जाए, फिर भी जब कयामत बरपा होगी तो अपने अमाल को कम पाएगा और चाहेगा दोबारा दुनिया में जाए दोबारा, ये किसी को सुना रहे तो वो सुनते सुनते गाड़ी में जा रहे कितने अच्छे खीरे पे चला जाए, वो खीरा देख रहे उनको हैरत नहीं हुई क्या, पैदाइश के दिन से लेकर बूढ़ा होकर मरते वक्त तक अल्लाह के इताअत में मुंह के बल घसीटा जाए, फिर भी जब कयामत बरपा होगी तो अपने अमाल को हकीर जाने कम जानेगा और चाहेगा दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए ताकि अमल करे। कोई छोटी बातें हैं ये रसूलल्लाह का, कोई छोटी बात कही जा रही है, कहाँ होना चाहिए हम लोगों को, क्या मुकाम हमारा होना चाहिए, हम कहाँ कितने पस्त हो गए, कौन इसको बताएगा, कहा दिल पे लिखो, जज्बा पैदा करो, दुआ मांगो, कभी इसकी भी दुआ मांगी जाती है परवरदगार हमारे दिल में जज्बा नहीं जज्बा पैदा हो जाए, तू पैदा करते परवरदगार, तू पसंद करता जहालत नापसंद करता, मेरी जहालत ख़त्म कर दे, मुझे शौक़ पैदा कर, इस तरह से पढ़ूँ इस तरह से पढ़ूँ, कैसे कैसे मोहल्ले वाले जमील का खत जिस तरह से पढ़ती हूँ मैं, फंदा लगा कर पंखे से लटक जाती हूँ, डीडीटी पी लेती हूँ, किसकी मोहब्बत, तो अल्लाह की मोहब्बत पे क्या किया, रसूलल्लाह की मोहब्बत पे क्या किया, अम्मा जहरा की मोहब्बत पे क्या किया, क्या कभी किसी मजलिस में आप लोग मजलिस पढ़ती हैं, पढ़ो ना मेरी जान पढ़ो, इससे अच्छी चीज़ कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती बगैर छठे इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम के, कभी इससे ऊपर का कोई काम नहीं, इससे अच्छा कोई काम नहीं भाई, ऐसे अच्छा काम था कि परवरदगार ने 124,000 अंबिया भेज दिए, अब इससे अच्छा काम क्या होगा, अंबिया जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने भेजा वो काम अगर आप अपने जिम्मे ले लें अपनी हैसियत के मुताबिक, अंबिया की हैसियत के मुताबिक भी, अब तो सोचें कि ये कितना बड़ा काम है, तो ये बड़ा इतना ही बड़ा काम है, पढ़ो या सीखो, पढ़ो मजलिस पढ़ो अच्छी चीज़ सीख, क्योंकि मजलिस तो कुछ नहीं बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा, जैसी हो रही वैसी हो रही, आप पढ़िए लिखिए जाइए यहाँ से पढ़िए सीख के जाइए, सोच के जाइए हमें क्या बताना है क्या नहीं बताना है, क्या माशरे में किस चीज़ ज़रूरत है, किसी एक मुज़ाकरा थी वो हम मुझसे पूछ रहे कि हम क्या पढ़ें, मैंने कहा कहाँ रहती हो, कि यहीं रहते हैं, मैंने कहा माशरा देखो, देखने के बाद देखो कि किस चीज़ की ज़रूरत है किस चीज़ की कमी है, उस चीज़ पे पढ़ो, क्या चीज़ ऐसी है कि जो कर्बला के अंदर नहीं मौजूद थी, वो चीज़ तो बताओ कि कर्बला में ये चीज़ नहीं मौजूद थी। इसके ऊपर कहाँ से निकालें, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो कर्बला में मौजूद ना हो। निकालो, बढ़ाओ उसको, खोलो, लोगों तक बताओ उसको क्या नहीं है। बच्चे ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि हैरान रह जाएगा, ये बच्चे कहाँ से आए, किस माँ की गोद के पले हुए हैं। एक आपकी माँ, आप माँ माएँ हैं, अब यूँ करके शुरू हो जाए। बच्चों की तरबियत में कितनी बात बताई जा सकती है, इस तरह एक से एक बच्चे थे उनका हवाला दिया जा सकता। इतने पढ़े लिखे बच्चे थे कि जब सर पर ऐसे करके हाथ फेरा गया, हज़रत मुस्लिम की शहादत के बाद जब हाथ फेरा गया सर पर, तो हज़रत मुस्लिम की बेटी कहने लगी, हालांकि छोटी बेटी, कि ना आप तो मेरे सर पे ऐसे हाथ फेर रहे जैसे किसी यतीम के सर पे हाथ फेरा जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या इल्म दिया गया था, क्या इल्म था उन लोगों का। छोटी बच्ची क्यों कर हाथ फेरा, तो कह रही कि आप तो मुझ पर ऐसा हाथ फेर रहे हैं जिसे यतीम बच्चों के सर पे हाथ फेरा जाता है। क्या चीज़, पूरी मजलिस पढ़ी जा सकती है ना, कितनी मजलिसें हो सकती हैं, कितने अच्छे अच्छे कलर इसके अंदर आ सकते हैं, सब कुछ होता है। रिश्तेदारों का मामला अलग उसी के अंदर मौजूद है, बीवियों की इताअत अलग मौजूद है। ऐसी सी एक पंजाबी नोहा बड़ा अच्छा, मावा करबला दी मावा करके आया नोहा, बड़ा अच्छा, जिसने भी सोच के लिखा बड़ा अच्छा सोच के लिखा, बहुत अच्छी फिक्र उसकी है। कैसी कैसी करबला की माएँ थी, तो तारीख में कोई ला नहीं सकता ऐसी माएँ, कैसी माएँ थी। एक यहाँ की माएँ अपने बच्चों को कुर्बान कर रही, इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए भेजे तो दीन के लिए भेजे थे। तुम दीन के लिए कहाँ भेजती हो, मार्केट में घूमा करती हो दिन रात, जब मदरसे में आने की बात होती है तो सबको ज़रूरत पड़ जाती है, किसी को है हाँ बेहोश हो जाती है। अब इतना भी सख्त ना कहना कि मस्जिद से उठ के भाग जाए और अभी तो अम्मी बात हाँ होता हो। खुद टाइम जब नीचे जाने के बाद भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, वक्त नहीं मिलेगा। जब क्याम कुरान के अंदर एक जगह है, जब क़यामत बर्पा होगी तो परवरदिगार जहन्नुमी से पूछेगा तुम दुनिया में कितने दिन जिंदा रहे। क्या चीज़ नहीं है, रट डालो कुरान के माने, कुरान के टुकड़े से निकाल निकाल के बातें कर सकती हो, इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा। सुन्नी शिया किसी के सामने पेश करोगे सब बड़े हैरत से सुनेंगे, क्योंकि माने किसी को नहीं पता। अब देखिए कितने अच्छे माने निकलते हैं इसके, और इसी के अंदर कुरान में ही मौजूद है। परवरदिगार जहन्नुमी से पूछेगा भला बताओ तो सही तुम दुनिया में कितने दिन जिंदा रहे, तो वो कहेंगे एक दिन या उससे भी कम, या उससे पूछ देख जो दिनों महीनों की गिनती करता रहा हो। इस पर अल्लाह ताला कहेगा तुमने सच कहा, जीते जी इतनी बात समझ जाते। कितना अच्छा पैगाम है, कितनी अच्छी बात की जा सकती, कुछ नहीं एक दिन की ज़िंदगी है, यानी तुमने सच कहा। अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या बातें कर रहे हो, 50 साल की तो तुम्हारी उम्र थी, तुमने सच कहा जीते जी इतनी बात समझ जाते। यानी दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत ही खतरा है, समझिए। वहाँ की ज़िंदगी होगी एक दिन क़यामत का, एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। अब वो बोला कहते हैं पता नहीं दुनियावी 50,000 साल या उखरवी 50,000 साल, एक दिन या एक दिन 24 घंटे का होता है, उसमें बोरियत हो रही होती, तो वहाँ क्या होगा। तो बच्चियों दुआ मांगो, मन्नत मांगो, मन्नत मांगो। जो अमिताभ बीमार पड़ गया तो आलम के ऊपर धागे बांधे जा रहे, अपने लिए धागा बांधो कि मेरे पास ऐसी वो हो जाए परवरदिगार कि मुझे दीवानगी वाला शौक़ पैदा हो जाए इल्म हासिल करने का, कि मैं इल्म हासिल करूँ, मैं इल्म हासिल करूँ, मैं इल्म हासिल करूँ, मैं इल्म हासिल करूँ, शौक़ पैदा करूँ। कुरान पूरा रट डालो, अभी तुम्हारी एज ही कितनी तुम लोगों की, रट डालो कुरान, माने के साथ पढ़ोगी याद हो जाएगा, निशान लगाती जाओ, निशान लगाती जाओ, निशान लगाए के बाद सब चीज़ निशान लगाओ, सब याद कर डालो। कोई बात, कोई कायनात की कोई बात, कोई आदमी बात करेगा सुनो कुरान की आयत, सुनो कुरान, कहते तुमको हर बात को कुरान पेश करते कर तो क्या हुआ, अल्लाह का कलाम था। अल्लाह बाद उलमा कहते गरवी साहब से मैंने सुना था, किसने कहा यह अल्लाह का मोहब्बत नामा है, परवरदिगार का मोहब्बत नामा जो बंदों को दिया है, ये अल्लाह का ये मोहब्बत वाला ख़त है, पूरा ख़त मोहब्बत वाला दिया, तो उसमें कहीं कहीं डरा भी रहा, कहीं शौक भी डरा रहा, सब कुछ है उसके अंदर, सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्या नहीं है उसके अंदर, आगे घाल पीछे घाल, सबकी नकाब कुशाई की। आपको तजुर्बा करने की ज़रूरत नहीं, बस आप देखेंगे पहचान जाएंगे ये सही है। खबरदार, यहूद नसारा को अपना सरपरस्त न बनाना, ये तुम्हारी दुश्मनी में एक है। ए ईमान वालों, तो मैं बार बार कहता था कि ये कह रहे हैं यहूद नसारा प्रस्तुत, हम लोग क्या कहें भाई, आगे तुम लोग आम आदमी बात गौर कर, कहें तुम देखे कह रहे ए ईमान वालों, आम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, ईमान वालों खबरदार, यहूद नसारा को अपना सरपरस्त न बना, ये तुम्हारी दुश्मनी में एक है। जो इनका अपना सरपरस्त बनाएगा हम उसको उसी बेका एक जानेंगे, मगर ए रसूल तुम देखोगे कि जिनके दिलों में निफाक की बीमारी है उनसे मिलने में जल्दी कर दे। देख लीजिए सारा दुनिया तबाह कर दी यहूद नसारा ने कि नहीं कर दी, सारी दुनिया तबाह कर दी। अब कोरोना लेके आए हो पता नहीं किस बात का, पर जहालत हमारे ये क्या है, सही है ना, लेकिन क्या ये जहालत फैला रही बुरी तरह से, बहुत सारे गुनाह फैला रही है, ये बहुत सारे गुनाह फैला रही। बाप आप लोगों का मोबाइल कभी लेके चेक करते हैं, क्यों नहीं चेक करते, जिम्मेदारी है उनकी कि चेक करें वो कि क्या क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या क्या भेज रहे हो, क्या क्या आ रहा, क्या क्या जा रहा है, चेक करें। तो तुम भी डरती रहोगी कि हमारे तो अब्बा जो है चेक करते हैं, अम्मा भी चेक करती हैं, अम्मा को देखने ही नहीं आता। बाकी सब आता चेक करना नहीं आता, ये है। होशियार रहो, होशियार रहो इन लोगों से, होशियार रहो, इनकी चालबाजियों में मत आओ। इनकी चालबाजियों में सबसे बड़ी चालबाजी शैम्पू है, शैम्पू बाल खोलो बेपर्दगी, शैम्पू बाल अच्छे होंगे तो बेपर्दगी, देखिए कितने स्टार बेपर्दगी, बेपर्दा तो इस तरह से घूम रही होती हैं औरतें जैसे हुक्म दिया अल्लाह ताला के बेपर्दा घूमो, जैसे अल्लाह के हुक्म दिया, जैसे हुक्म दिया गया एक कर दे अगर दरगुजर न करे परवरदगार, माफ़ न करे, ढील न दे, रसूलल्लाह की उम्मत में होने की वजह से ये सब एहसान हमारे ऊपर हो रहा है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। वरना ये दुनिया कब की ख़त्म कर दे पूरी, जब कुरान पढ़ोगी तो देखोगे कैसी कैसी कौमों को कैसा कैसा तबाह किया अल्लाह ताला। बड़ा अकड़ा करते थे, बड़ी लंबी लंबे खत के हुआ करते थे, मोटे ताजे हुआ करते थे, ये कर लेंगे हम, वो कर लेंगे, फलाना आएगा तो हूद के ज़माने में आंधी चलेगी तो मैं पैर हमारे ज़मीन में गड़े होंगे, हमें कोई हिला नहीं सकता। हज़रत नूह के ज़माने में क्या हुआ, हज़रत लूत के ज़माने में क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, फिरौन के साथ क्या नहीं हुआ, शद्दाद के साथ क्या नहीं हुआ, नमरूद के साथ क्या 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 हुआ, पूरा तो कुरान में सब भरा। और ये स्टोरी टाइप की आपको याद भी हो जाएगी, अभी हम सुनाना शुरू करें सब याद है हमें, लेकिन इसी बहाने से वक्त को वो कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि है ये ऐसा है सारा, उसके अंदर सब मौजूद है पहले से। तो जब आप पढ़िएगा तब आपको पहले से पता चलेगा ना कब का तबाह कर दे, ये रसूलल्लाह की वजह से, उनके मोहम्मद आले मोहम्मद की वजह से हमारी बचत है। वरना नाफरमान हम लोग भी बहुत ज़्यादा हो गए, बराबर के हो गए, कुछ पता ही नहीं, फ़र्क ही नहीं पता चलता। काला कपड़ा न पहने तो मुहर्रम में भी पता नहीं चले, आम दिनों में कहाँ पता चलता है कि हम बिल्कुल अभी बहुत आने दीजिए नौ रबीउल, देखिएगा तमाशा, ऐसा कूदते हैं, ऐसा फांते हैं, ऐसा वो करते हैं, ऐसी लिपस्टिकें लगाई जाती हैं, इतनी बाल खोले वो लग रही, मेहंदी लग रही, ऐसी जैसे कि इनको जेल में रखा गया था जब से पैदा हुई, आज पहली दफ़ा खोला जा रहा है, आज आज़ाद हो गए। तो हम लोग खुद भी बचपन में ये होता है, पूरे साल अम्मा मना करती गाना मत सुनो, गाना मत सुनो, गाना मत सुनो, गाना हराम है, गाना हराम, हमेशा मना करती। उसका असर भी हुआ, एक दफ़ा से छोटा सा मैंने एक फिकरा पढ़ लिया था जंग अखबार में कि खुमैनी साहब ने 99 मौसीकारों को कोड़े लगवा दिए तेहरान के अंदर, एक शादी के महफिल में वो कर रहे थे, गाना बजाना कर रहे थे, लग गई दिल के ऊपर, क्यों बचपन से सुनते चले आ रहे हैं अम्मा से, अब एक आलिम से सुन लिया, अरे बाप रे, मैंने कहा इसका मतलब है कुछ चक्कर ही है। शादी साहब के कैसेट सुने, सबको सुना, खुदा हाफिज़ होंगे। तो अल्लाह ताला में नैमुल बदल के देख के तौबा करेगा मीर, हमने भी तौबा किया, ये हदीस कहीं पढ़ रहे थे भी हाल में ही, अल्लाह जब की तरफ से कोई गुनाह कोई छोड़ता है तो अल्लाह उससे बेहतर चीज़ अदा करता है। तो हमको अता कहते हैं हम पूरे साल लोहाएँ सुनते हैं, बहुत मज़े में दिल खुश हो गए, जब तक कि दफ्तर जाके एक नोहा लगा नहीं लेते, कोई ऐसा जो हमारे दिल में कैफियत उठ रही होती है उसी कैफियत के मुनासबत से नोहा लगाते हैं, मदद करते हैं। कभी अम्मा ज़हरा का नोहा सुन लिया तो ख्यालों में है कि हमारी मदद कीजिए, कभी मौला मुश्किल गुशा का है तो ख्यालों में आ रहा है कि हमारी आप मदद कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, तो ऐसे हो रहा था तो नेमुल बदल दिया तो पूरे साल कर दे दिए, डर भी नहीं ये हो रहा तो इच्छुक बताए बचपन से तो बताओ, अब तो बताना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो दूर कट के गर्दन जाके गिरेगी, हज़रत मूसा से यही कह रहे हैं ना, तब भी मैं इसकी दुआ कबूल नहीं करूँगा। क्या समझ रहे, ये तो ये अब उसके बाद से ये रहमत शुरू हुई जो इतनी सारी क्लास जो ले रहे हैं सब वही है, दरगुजरी रहमत उन्हीं लोगों की है जिसकी वजह से हम लोग बचे हुए हैं। न मुहर्रम छोड़ते हैं, न मस्जिद छोड़ते हैं, न नमाज, ना मस्जिद, कुछ भी नहीं, जो जी चाहे कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये कौन ये पूछने आया है? तो अच्छा ठीक है चले जाएंगे भाई, ये जो इतनी देर जब बातें हुई उसमें कोई सवाल है तो पूछ लो वरना भूल जाओगे तुम लोग भूल जाओ, कोई सवाल है तो पूछो। शाबाश पूछ लो बेटा, इल्म हासिल करने में झिझको मत, जितना सहेलियों के साथ रह के उछल कूद करने में झिझकती नहीं होते, इल्म हासिल करने में झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं, फौरन पूछो, यहाँ कोई ना कोई बता देगा, तुम्हारी क्लास में भी ऐसी ऐसी ख़वातीन हैं जो वही तुम्हें बता देंगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन हर मुसलमान मेरी ज़्यारत करेगा, यानी इतनी खूबसूरत चीज़ है रसूलल्लाह की ज़्यारत के हर मुसलमान ज़्यारत करेगा सवाए तीन अफराद के, तीन ग्रोह के लोग ऐसे हैं जो ज़्यारत नहीं कर सके। एक तो आके वालदैन, होशियार रहो होशियार रहो होशियार रहो, अपनी किस्मत बनानी है, खुश नसीब बनना है, वालदैन की इताअत करो, खुश रखो उनको, आके वालदैन। दूसरा मुसलसल शराब पीने वाला, और तीसरा जो मेरा नाम सुने और दुरूद ना पढ़े। ये वालदैन का आग जो होता है ये बहुत ही वो है, इसका बहुत ख्याल रखो, तो ऐसा है कि जैसे कि तुम अंगारे पर चल रही हो, इतनी एहतियात से चलो, इतना एहतियात करो, या बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा तबाह कर दिया गया माशरा, वालदैन के साथ बहुत ज़्यादा बेएहतरामी होने लगी तो उनका भी नुकसान हो रहा है, उनको भी तकलीफ़ पहुँच रही है, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तुम लोगों को खुदा ना करे तुम लोगों ने नहीं, जो लोग वालदैन का एहतराम नहीं करते उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी।
करना
है, मतलब अगर कुछ अल्लाह ने कहे वाले को गाली भी दे रहे हैं तो मतलब खुश होते हैं, ये
नहीं कहते कि ना करो,
टिक्का
दुक्का ऐसे लोग आम तो नहीं है बातें,
तो उतनी जबान में कोई अच्छी चीज बोलवा लो, कहीं से तो बात चलेगी, एक कतरा तो पानी गिरेगा कहीं, पहला तो कतरा आना चाहिए ना, हम ही लोग सीख लें, आगे बात बढ़े, चार जगह बैठेंगे चार लोगों में बात करेंगे तो कहेंगे वाली बात कि नहीं ये नहीं ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए, वालदैन के साथ खुद सलूक करना। तरबियत चले बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हो कुछ भी कर रहे हो आप ये समझ लीजिएगा जब स्कूल से तो आते घर होंगे ज़्यादा वक्त कहाँ गुजारते हैं घर में गुजारते हैं कि स्कूल में गुजारते हैं तो स्कूल में गुजारी हुई चीज़ का जो कुछ सिखाया गया सब सीख लिया घर में सिखाई नहीं जाए तो सीखें कहाँ से सीखें तो वालदैन के एहतराम करो वालदैन के एहतराम माँ बाप दोनों आते हैं ना तो माँ को भी चाहिए बाप को भी चाहिए माँ को भी चाहिए कि पीठ पीछे बाप को कुछ ना कहे कि बच्चा सुन रहा हो उसके दिल से वक़्त घटे या बाप को नहीं चाहिए कि माँ के सामने कोई बात या तो बच्चों के सामने ही माँ बाप में लड़ाई हो रही हो उनके दिमाग से कदर घट जाती अब क्या पता क़यामत के दिन वो पूरा उन्हें अजाब मिलेगा या कम मिलेगा क्योंकि उनके अजबाब तो दूसरे भी हो रहे हैं इधर ले बेहतर जाता ले है बहुत ख़तरनाक चीज़ बहुत ही ख़तरनाक चीज़ वालदैन के साथ उस सलूक करो 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 कहा गया नहीं खाने काबा की तरफ देखना इबादत है इमाम आदिल की तरफ देखना इबादत है ना सारी चीज़ें और किसी की तरफ देखना इबादत है, आलिम आलिम के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, और माँ बाप की तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखना इबादत है। बात बदल गई यहाँ पर, मोहब्बत भरी नज़र से देखना इबादत है, इतनी फ़र्क आ गए। तो बहरहाल जब तक पढ़ती रहो पढ़ाती रहो और इल्म हासिल करती रहो, ये तरबियत गाह है, यहाँ पे आती रहो जाती रहो तो अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। भाई हम तो अपनी क्लास में आते हैं तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कोई से भी सब्जेक्ट लेके आए कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जो इनको फीड की जाए, फीड की ना बताया जाए, इनको अमल कराने के लिए कही जाए, बात जैसे कि अमल करें जो भी बात हो। बहरहाल तो ये क्या बताया था, हज़रत मूसा का वाक़या आपको सुनाया था। अच्छा इसी किताब में, किताबें इसी लिए लेके आए, रसूलल्लाह से बताया गया कि ए अल्लाह रसूल, एक औरत है रात भर नमाज़ें पढ़ती है, दिन भर रोज़ा रखती है। एक औरत है, सुनिए, रात भर नमाज़ें पढ़ती है, दिन भर रोज़ा रखती है, लेकिन अपने ज़बान से अपने पड़ोसियों को आज़ार पहुँचाती है। तो रसूलल्लाह का उसमें कोई नेकी नहीं, वो जहन्नुम है। ये इस किताब में है, शिया किताब में। ये देखिए, ये नहीं कि एक पता नहीं कहाँ से आ रही बात का, इब्राहिम ममिनी की किताब है ख़ानदान के अखलाक, उसमें ये हदीस मौजूद है। हदीस का रेफरेंस भी उन्होंने दिया हुआ कि कौन किस नंबर पे है, क्या है, लिख लिया क्या, इब्राहिम अमीनी, अल्लामा इब्राहिम अमीनी। देख लिया, जो कोई नेकी नहीं, वो जहन्नुमी। कहाँ गई सारी नेकियाँ, किसकी वजह से, जहालत की वजह, जाहिल थी इसलिए उसे पता ही नहीं कि गालियाँ बकना जो है, बुरा भला कहना, ये खुद एक बुरी चीज़ है, उसके बाद पड़ोसियों को आधार पाना ये अलग बुरी चीज़। तो पड़ोसियों के बहुत ख्याल करने को कहा गया कि पड़ोसियों का ख्याल करो, हर चीज़ ख़त्म होती चली जा रही, फिल्में दिखाई जा रही, ड्रामा फिल्में और ये सब मिला जुला के सारी चीज़ें जो रही ख़त्म हो, ये तालीमात इसकी दबती जा रही। कौन दबा रहा, हम दबा रहे, नहीं उठाओ इसको, समझो कि जैसे हमारी कोई चीज़ खो रही है, गिराई जा रही है, ख़त्म की जा रही है, तो हम उसको खोने नहीं देंगे, उसको बढ़ाएंगे। ये जो हदीस भी सुनाई थी आपको, जो अभी बताई थी, कोई नेकी नहीं वो जहन्नुमी है, ये बिहारुल अनवार के 103 नंबर जिल्द नंबर जो है 103 है, और सफ़र नंबर है 253 बिहारुल अनवार के। हाँ अभी पूछ रही थी ना क्या नाम है राइटर का, चलिए आगे बढ़ें। ख्वाहिशात के देखिए, एक दफ़ा क्या हुआ कि रसूलल्लाह ने एक छोटा सा लश्कर जो था जंग के लिए भेजा, जब लश्कर जंग करके वापस आया तो रसूलल्लाह को इस्तकबाल किया, मरहबा क्या कहना, जो जिहाद असगर को अंजाम दे के आए हैं, अब जिहाद अकबर की तरफ चलें। अब आप बताइए, जिहाद असगर अंजाम दे के आए थे तो क्या हुआ था, बहुत सारे सिपाही मारे भी गए होंगे, इधर के लोग मारे भी गए होंगे, ज़ख्मी भी हुए होंगे, सब कुछ हुआ होगा ना, बच्चे यतीम हुआ हो गया, औरतें बेवा हो गई, तो ये जंग असगर थी। अब जब ये हाँ इधर आए तो कहने लगे अब जंग अकबर की तरफ चलो, ये लोग घबरा गए, कह गए अभी इसमें आए हैं, इतना सारा हम नुकसान भुगत के आ रहे हैं सारा, तो ये तो जंग असगर थी, अब जंग अकबर में क्या होगा, डर गए लोग। जंग अकबर में क्या होगा, जंग अकबर अल्लाह रसूल क्या कि अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करना जंग अकबर, वो जंग असगर थी, जंग नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद। आप ये नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद क्या करना, आपके नफ्स में क्या चीज़ है, कोई चीज़ है, कोई फ़िक्र है आपको, जैसे कहते हैं इन्होंने अपने दिल को अपना इलाह बना लिया, खुदा बनाया, और जो इनका दिल कहता वही करते हैं, तो जंग करो इसके ख़िलाफ़। अगर कोई बुरी चीज़ है, अगर नहीं करेंगे, अंदर अंदर कहोगे नहीं करेंगे, उसमें डटे रहो, मुश्किल होगी वक्त। जिहाद क्यों कहा जा रहा है कि मुश्किल होगी, ज़रा अपने अंदर की चीज़ से लड़ना ज़रा मुश्किल होगी, लेकिन ये हो क्योंकि कह रहे हैं कि करो तो इसका मतलब हो भी जाएगा तो हो जाएगा, लड़ेंगे कैसे। हमने कहा हमने छोड़ दिया कहना सुनना, छोड़ दिया तो क्या हो गया, कुछ नहीं। वक्त तो लगा ना, मुश्किल तो पेश आई, लेकिन क्या हुआ, अल्लाह ने नेमल बदल दिया। आप भी जो गुनाह छोड़िए तो क्या पता कोई दूसरी लज्जत की चीज़ आपको दे दे, परवर देगा कि मेरी वजह से इसने गुनाह छोड़ा, दूसरी चीज़ दे देगा लज्जत की। तो इसी इस तरह से होता है ये सारी चीज़ें कि जो गुनाह के ख़िलाफ़ जिहाद है, नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करना जो है करना क्या है, हाँ, अकलमंद की दलील, अकलमंदी की दलील है। मौला मशरूक कुशा कह रहे हैं इल्म के साथ नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करना अकलमंदी की दलील है। तो इल्म तो यहाँ हासिल कर रही, अब उसके साथ साथ नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद भी किए। ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जिहाद बहिश्त का मोल है, कीमत है, बहिश्त की कीमत है। ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जिहाद बहिश्त की कीमत है। नहीं उठ रहे हैं सुबह की नमाज की आदत नहीं, आदत नहीं तो अब मुस्तहकम हो गई आदत, अब नहीं पता चल गया, अब लड़ो लड़ो, नहीं हम उठेंगे तो ये क्या, ये जिहाद होगा कि हम उठेंगे सुबह की नमाज़ ज़रूर पढ़ेंगे। उलमा पुराने ज़माने के उलमा जो थे अच्छे अच्छे लोग थे, अब तो अलार्म आ गया, अलार्म लगा लिया तो नौकर ग़ुलाम रखा करते थे कि हमें सुबह की नमाज़ में उठाना। आज आप घर में किसी से कहिए कि सुबह की नमाज़ में उठा दीजिएगा, वो कहेंगे तो अलार्म है, इसका फ़ायदा उठाइए मोबाइल का, इसके ज़रिए से उठिए। लोग अलार्म लगाते हैं, अलार्म लगाया बज गया, पाँच मिनट बाद फिर बजेगा, दो दो दफ़ा तीन तीन दफ़ा बजता कि उठो। तो ये क्या है, ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ जिहाद बहिश्त की कीमत है। क्योंकि हम इल्म हासिल करें और जिहाद न करें, इल्म हासिल करें और अपने नफ्स का मुहासबा न करें तो बेकार हो गया ना। आप जो इल्म हासिल कर रही या आप वो सोच रहे कि हम हमारे अंदर तो खूबी पाई नहीं जाती, तो अब क्या फ़ायदा, खाली सुन के लिख के चली गई, आगे इम्तिहान आया उसमें दे दिया ख़त्म, तो वो आया तो नहीं हमारे। जो चीज़ भी पढ़ाई जाती है वो इसीलिए पढ़ाई जाती है कि उसमें हम अमल करें, ऐसी कोई चीज़ थोड़ी पढ़ाई जाएगी जिसमें अमल न कर सकें। नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद, अच्छा ठीक है। इंतहाई दर्जे का मुजाहिद वो होता है जो अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करता है। मौला मशरूक शाह नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करता है, एक उससे भी आसान चीज़ हज़रत अली ने बताई। नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद ये है, क्या है अब ये इसका वो भी बता दें क्या है, अभी तो आप ख़ुद से तय्यून कर रहे थे, अब बता दिया उन्होंने क्या। नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद ये है कि तू उसे गुनाहों के इर्तिकाब से काबू में रखे, यानी गुनाह ना करो तुम और हलाकतों से बचाए, तू उसे गुनाहों के इर्तिकाब से काबू में रखे और हलाकतों से बचाए। एक दफ़ा फिर बोलें। नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद ये है, हज़रत अली फरमा रहे हैं कि नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद ये है कि तू उसे गुनाहों के इर्तिकाब से काबू में रखे और हलाकतों से बचाए। फिर छठे इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम, मुश्किल तरीन जिहाद उसका है जो गुनाह करना छोड़ दे, क्या कहने, मुश्किल तरीन जिहाद उसका है जो गुनाह करना छोड़ दे। अब यहाँ जो बच्चियाँ आ रही हैं, आप देखिए आपकी आपकी उम्र की जितनी बच्चियाँ हैं, बहुत सारी बच्चियाँ स्कूल कॉलेज जाती होंगी तो देखी होंगी, ये लोग तो बेपर्दा है, इनके में तो कोई आदाब आ ही नहीं रहा भाई। उनको तौफीक न मिलना भी आदाब ही है। आपको तौफीक मिली या आप ऐसी जगह पर गई जहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ये अल्लाह ताला की रहमत है। हज़रत याकूब के जो बाकी बेटे थे, उन्होंने जो गुनाह किया था हज़रत यूसुफ़ के साथ कि उनको ले जाके कुएं में डाल दिया था वगैरह वगैरह, तो उनको बहुत मजम्मत मलामत की गई। तो वो कहने लगे कि अगर ऐसी बुरी बात हमने की है तो अल्लाह ताला हमारे पर अदाब क्यों नहीं नाजिल करता। तो हज़रत याकूब ने कहा तुझे तौफीक ना मिलने ही तो अदाब है, और क्या अदाब है, इससे बड़ा भी कोई अदाब हो। तो तौफीक का ना मिलना भी अदाब होता है। तो तौफीक मिली हुई है किसी वजह से, माँ बाप ने आपको यहाँ भेजा हुआ है, किसने क्यों भेजा हुआ, कितने ऐसे लोग जो गाफिल है, छोड़ो जाओगे मदरसे, बड़ा मदरसे तो ही नामे अंदाज में कहते बड़ा मदरसा, यहाँ भेजा हुआ जो छोटे छोटे बच्चों को लेके आती हैं, यहाँ पे औरतें बच्चियों को लेके आती हैं, आप लोग यहाँ पे आई हुई, तो ये तौफीक है, माँ बाप की भी तौफीक है और आपकी भी खुशनसीबी है कि आप यहाँ भेजी गई तो यहाँ आ गई। अब आ गई तो आपको यहाँ क्या चीज़ मिली, जो बताने जा रहे हैं वो ये कि आपको यहाँ हिजाब बताया गया कि आप यहाँ हिजाब कीजिएगा तो क्लास में आइएगा वरना नहीं आने को दिया जाएगा, ये आपको रोका जाएगा। तो ये तौफीक है। अब ये क्या हुआ, अब ये बेहिजाबी का गुनाह छूट गया, तब छोड़ दीजिए इसको, इंतहाई दर्जे का समझे कि जिहाद होगा जो आप ये बेहिजाबी छोड़ दें हमेशा हमेशा के लिए। उसकी नहीं है कि आज तो बहन की शादी है, मंगनी है, तो फलाना जगह अब तो यहाँ पर आज़ादी है। कोई आज़ादी तो उस वक्त मिलेगी जब अल्लाह तुम्हारे सामने ना हो, और अल्लाह हर वक्त है तो आज़ादी है ही नहीं, यही थोड़ी अल्लाह में, अल्लाह तो हर जगह है। तो वहाँ भी ना करो तो है कि बहुत अब शादी भी आके महफिल भी नहीं करो तो क्या हुआ, अल्लाह तो यहाँ मौजूद है ना, सीधा से जवाब है कि क्यों नहीं, अल्लाह तो यहाँ भी है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, उस शख्स का जिहाद सबसे अफजल है, उस शख्स का जिहाद सबसे अफजल है। किस शख्स का, जो इस हाल में सुबह करता है कि किसी पर जुल्म करने का इरादा ना हो, जो इस हाल में सुबह करता है कि उसको किसी पर जुल्म करने का इरादा ना हो, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सास बहू के चक्कर चलता है, जुल्म करने का इरादा ना हो, ये सबसे ज़्यादा बिला हो जाएगी। ये दुश्मनियाँ जो हैं शैतान ने डाली हुई, माशरे ने डाली हुई, उन्हें बिला हो जाए के लिए क्या है, वो भी किसी की लड़की है, तुम्हारी भी लड़की कहीं गई, जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी लड़की को कोई नुकसान ना पहुँचे, कोई इज्जत ना पहुँचे, उसी तरह दूसरे माँ बाप के लिए भी यही सोचे कि वो भी यही चाहता कि उसके बच्चों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचाए। तो हमें बराबर का सलूक करना चाहिए, इंसाफ़ करना चाहिए और खुदा से डरना चाहिए कि किसी पर जुल्म ना हो। फिर छठे इमाम जाफर सादिक इस्लाम फरमाते हैं कि उसका जिहाद, उस जिहाद में कोई फ़ायदा नहीं, इसमें परहेजगारी नहीं, इसमें परहेजगारी नहीं। इल्म हासिल कर रहे हैं तो कुछ सीख रहे हैं तो इसका मतलब है कि जहालत की चीज़ों को छोड़ते जाएं, कुछ सीख रहे हैं तो इसका मतलब है जहालत चीज़ों को छोड़ते जाएं, मतलब इसको आसान जी। उस जिहाद का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें परहेजगारी ना हो गई रिपीट। जिहाद 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 ये हो रहा था, बताइए जिहाद क्या कहानी की, वो सबसे अच्छा जिहाद उसका जो गुनाहों को छोड़ दे, गुनाह छोड़ दिया सबसे बेहतरीन, गुनाहों को छोड़ देता, छठे इमाम ने बताया। अब गुनाहों को छोड़ देता क्या, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस है, सुनिए, जो मेरा नाम सुने और दुरूद ना पढ़े। बड़ी ख़तरनाक हदीस है, बहुत अच्छी हदीस है, ख़तरनाक भी है, बहुत अच्छी भी है। आप कहते हैं कि जाहिल वो है जो अल्लाह की नाफरमानी करे, جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے. چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بلند مرتبے والا کیوں نہ ہو, چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بلند مرتبے والا کیوں نہ ہو, کتنی آسان ڈیفینیشن بتا دی علم کی اور جہالت کی. آپ گناہوں سے بچائیے, اگر گناہوں سے نہیں بچائے تو آپ یہاں کے کتنا بھی پڑھتی رہیے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ رسول اللہ کہہ رہے جاہل وہ ہے جو خدا کی نافرمانی کرے, چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت بلند مرتبے والا نہ ہو, بہت پیسہ ہو, بہت ابا کے پاس پیسہ ہے, شوہر کے پاس پیسہ ہے, بھائی کے پاس, اس سے کچھ نہیں ہوتا. جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, وہ جاہل جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے, چاہے کچھ بھی ہو. تو اب یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہو, سیکھ رہی, تو جہالت تو کیا ہے, گناہ سے بچاؤ اپنے آپ کو, زور دو کہ گناہ نہ کرنے پائے. بڑی بڑی تقریریں یہ ہو, اس سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن سب کوشش یہ کرو کہ گناہ نہ کریں ہم. تو یہاں پہ مدرسہ بھی کامیاب ہوا, پڑھانے والے بھی کامیاب ہوئے, اور جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں خدمت گزاری کر رہے ہیں وہ لوگ بھی کامیاب ہوئے. اصل کام ہو گیا کہ گناہ سے بچایا جا رہا ہے, کیونکہ جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے. تو یہاں جہالت سے تو ہٹایا جا رہا, بدترین مصیبت جہالت, تو جہالت جب ہٹایا جا رہا ہے اس کا مطلب گناہ نہیں کرنا ہے آپ لوگوں کو, اور آپ لوگوں کے ہمیں بھی نہیں کرنا ہے, کسی کو نہیں کرنا ہے گناہ. جیسے کہ مولا علی کہہ رہے ہیں, ایک چیز اور سن لیجیے, اس سے جہالت کے اوپر تو دوسری جگہ پہ فائدہ پہنچائے گی. کہتے ہیں کہ بغیر علم اور پرہیزگاری کی عبادت جسم کو تھکانا ہے, بغیر علم اور پرہیزگاری کے, یعنی زہد کے, بغیر علم اور زہد کے پرہیزگاری کے عبادت جسم کو تھکانا ہے. یعنی ہم جسم تھکا رہے ہیں, رات رات بھر بھاگ کے عبادت کر رہے ہیں. وہ عورت کیا کر رہی تھی, رات بھر نمازیں پڑھتی تھی, دن بھر روزہ رکھتی تھی, جسم تھکا رہی تھی نا. نتیجہ کیا نکلا, نتیجہ یہ نکلا اللہ کے رسول کا, اس میں کوئی نیکی نہیں, وہ جہنمی. تو بغیر علم اور زہد کے عبادت جسم کو تھکانا ہے. وہ حدیث پہلے ہی لکھوا چکے ہیں کہ بدترین مصیبت جہالت ہے. مولا کہہ رہے ہیں بدترین مصیبت جہالت ہے, جو کہہ دیا سو کہہ دیا. ایک بہت اچھی حدیث ہے مولا مشکل غصہ کی لکھی ہے, یہ سب بہت خوبصورت چیزیں ہیں. آپ دیکھیے کہ کوئی بچہ, کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے, کوئی نوحہ وغیرہ پڑھ رہا ہوتا ہے, تو ماں باپ جو ہے اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں, ادھر ادھر تمام چاہ رہے ہیں, تمام دنیا میں پھیل جائے اس کو, کہاں کہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا, کسی کی وہ پڑھ رہا, توتلا جیسے بتا رہی تھی, توتلا توتلا کے بولتا تو اسے مختلف باتیں کہلوائی جاتی کہ وہ توتلا رہا, گناہ سکھایا جا رہا. آپ بتائیے کہ ان لوگوں کے کلام سے خوبصورت بھی کوئی چیز ہوتی تھی, یہ کیوں نہیں یاد کروایا جاتا, نہ وہاں یاد کروایا جاتا, نہ خود ہم خود یاد کرواتے ہیں اپنے آپ سے, کہتے ہیں کہ یاد کرو. دیکھ کے تو آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ زیر زبر کی بھی غلطی نہ ہونے پائے, کیونکہ آپ نوٹ کر رہی ہیں, ورنہ ہمیں یاد ہے. دیکھیے کتنا اچھا قول ہے, کاش میں جانتا ہوتا کہ علم سے ہاتھ دھونے والے نے کیا پایا, یعنی علم حاصل نہ کرنے والے نے کیا پایا, حالانکہ وہاں دھونا لکھا ہوا مولانا نے بھی کہا. کاش میں جانتا ہوتا کہ علم سے ہاتھ دھونے والے نے کیا پایا, اور جس نے علم حاصل کیا اس نے کیا کھویا, کچھ کھویا ہی نہیں اس نے. جس نے علم حاصل کیا اس نے کیا کھویا, اب دیکھیں پھر ایک تنبیہ حدیث ایک آ گئی, تو یہاں آ کے پڑھ رہی ہیں تو پڑھنے والوں کے لیے ایک تنبیہ حدیث ہے مولا مشکل غصہ کی, تجلیات حکمت نام کی کتاب ہے, اس سے کہتے ہیں کہ جو علم تمہاری اصلاح نہ کرے وہ گمراہی ہے. اب یہاں آ کے جو علم دیا جا رہا وہ اصلاح نہ کرے تو گمراہی ہے, یہ جاہل بقول رسول اللہ کے جاہل جو اللہ کی نافرمانی کرے. جو علم تمہاری اصلاح نہ کرے گمراہی ہے. وائس ورثہ دوسری جگہ میں مولا ہی نے فرمایا کہ بہترین علم وہ ہے جو تمہاری اصلاح کرے. اب دونوں میں سے کوئی بھی چیز لے لیے بات ایک نکل لی. بہترین علم وہ ہے جو تمہاری اصلاح کرے. بہترین علم وہ ہے جو تمہاری اصلاح کرے. ہم پڑھے پڑھ کے چلے آئے ہماری اصلاح ہی نہیں ہو رہی ہر برائی. یاد رکھو یہ دو تو ضرور یاد کرو. بہترین علم وہ ہے جو تمہاری اصلاح کرے, دوسرا رسول اللہ کا. جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے. یہ دونوں یاد رکھو, ایک ساتھ ملا لو, چاہے ملا کے لکھو. کیونکہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں تو ہم علم نہیں حاصل کر رہے ہیں. یہ وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو ہماری اصلاح نہیں کر رہا, کیونکہ ہم تو گناہ کر رہے ہیں. اگر گناہ دھیرے دھیرے کر کے چھوڑنے لگو گے تو یقین جانو کہ بہت یا گناہ کی محفل بہت بری لگے گی. ہمارے ایک مرجع تھے, شاید ہم نے خمینی صاحب کے بارے میں ہی سنا تھا کہ کسی محفل میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے, حالانکہ وہ اس محفل میں اس گفتگو میں شریک نہیں تھے, کسی اور طرف تھے. لوگ غیبت کر رہے تھے, ان کے کان میں آواز پہنچ گئی, ان کو بخار آ گیا. بھائی بدترین گناہ ان کو بخار آ گیا. یہاں غیبت چھوڑ دے تو عورتوں کو بخار آ جائے, الٹا معاملہ, بخار آ جائے ان کو. اتنی غیبتیں ہوتی ہیں. ایک کتاب ہے ماد یعنی قیامت, محسن قرائتی کی لکھی ہوئی کتاب. وہ لکھتے ہیں کہ 33% قبر جو ہے غیبت کے عذاب سے بھر جائے گی. اتنی غیبتیں ہوتی ہیں, اتنی عام ہو گئی اب کہ مجلس کے فرش پہ بیٹھ کے غیبتیں ہوتی ہیں. مطلب خدا کا کوئی ڈرنے والا نہیں, کوئی بول رہا نہیں, کوئی پلٹ کے کہنے والا, مجلس سنو غیبت مت کرو. تو وہ پھر ہم سے ناراض ہو جائیں, تو ہو جائے ناراض. اللہ ناراض ہو رہا تو اس کی پرواہ نہیں, ان کے ناراض ہونے کی پرواہ ہے. مسجد کے فرش پہ غیبت ہو رہی ہوتی, لال کپڑا پہن کے چلی آئے تو کتنا ٹھوکیں گے آپ لوگ. سب لوگ لال کپڑا پہن کے مجلس میں آئیے, جو بے پردہ عورتیں آئی ہوتی اسی کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں, اس کے بارے میں کوئی ٹرین ٹوکتا نہ وہ اور نہ یہ. وہ سمجھ گیا کیا؟ بس ٹھیک, اتنا ہی کافی, نہ وہ نہ یہ. منافق کا علم مولا مشکل کشو کہہ رہے ہیں. منافق کا علم اس کی زبان پر ہوتا ہے اور مومن کا علم اس کے عمل میں. کیا حسین بات کہی. منافق کا علم اس کی زبان میں ہوتا ہے. لکھو, ہیرے سے لکھنے والے اقوال ہیں سارے. منافق کا علم اس کی زبان پہ ہوتا ہے اور مومن کا علم اس کے عمل میں. مولا مشکل کشا کی ایک اور حدیث سنیے, بہت ہی اچھی حدیث ہے, بلکہ بہت ہی پسندیدہ حدیث ہے میری تو. کم سے کم علم کا بلند ترین مقصد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. علم کا بلند ترین مقصد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. جب خوف ہوگا نہ گناہ کیجیے گا, نہ کوئی نافرمانی کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. خوف بہترین چیز ہے اللہ تعالیٰ کا. ایمان کا بہترین ساتھی علم ہے. آج ہم نے علم کی بہت ساری چیزیں تقریبا, اب جب بات بڑھے گی آگے تو دوسری چیزیں شروع ہوں گی. جی, ایمان کا بہترین ساتھی علم ہے. جاہل آدمی لاکھ ٹکرے مارتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی دشمن, مولا مشکل کشا, کوئی دشمن جہالت سے زیادہ نقصان دہ نہیں. کوئی دشمن جہالت سے زیادہ نقصان دہ نہیں. ایک مولا کا قول تھا یا اشعار تھا, اس کے ترجمہ جو دیا گیا تھا لکھا ہوا تھا وہ یہ انہی کسی کتاب میں ہے, علم اور حکمت کسی کتاب میں, اس کا ترجمہ یہ تھا کہ جب بندے کو قبر میں لٹال دیا جاتا ہے. سنیے, یہ ایسی چیزیں جو ایک نسخہ سمجھیے مولا بتا رہے ہیں. قبر میں ہمیں ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہوگا ہمارے, لیکن یہ کیسی شیعت ہے کہ ہمارے ائمہ 14 معصومین ہیں, ہمارے ساتھ قبر میں کوئی ہوگا نہیں. ایسا نہیں. हम जिन मासूमीन के मानने वाले हैं उनकी अगर पैरोकारी करेंगे तो कोई जगह हमारे लिए मुश्किल नहीं है, ये समझ लीजिए। देखिए अभी ये नहीं बता रहे, दूसरी चीज़ बता रहे हैं। तो उसमें है कि जब बंदा कब्र में जाता है तो एक तरफ उसकी नमाज होती है, रोज़ा होता है, सदका होता है। जब एक आग आती है तो नमाज उसे हटा देती है, रोज़ा उसे हटा देता है, एक आग आती है तो सदका उसे हटा देता है, इसी तरह तीसरी आग आती। इतने में एक तरफ एक कोने में सब्र खड़ा होता है, वो इन सब से कहता है अगर तुम इस मैयत की हिफाजत नहीं कर सकते तो हट जाओ, मैं इसके लिए अकेला काफ़ी हूँ, मैं इसके लिए अकेला काफ़ी हूँ। वो उसका इल्म होता है, कहता मैं अकेला काफ़ी हूँ, इसी किताब में मौजूद है। तो देखिए ये है, वो बता रहे हैं कि देखिए कौन कौन सी चीज़ है जो आपको कब्र में, हम पंजतन पाक के 12 इमाम के मानने वाले, चारदा मासूम के मानने वाले, हमें कब्र में तकलीफ कैसे हो। कहीं दुनिया की, कहीं दुनिया में तो उन्होंने भी तकलीफ़ उठाई थी, वो दुनिया की तकलीफ़ को खातिर भी नहीं लाते। असल तकलीफ़ तो ये होगी जहाँ कोई नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, कहीं कौन होगा। तो ये आखिरी बात बता के बंद करते, फिर आप सवाल जवाब कीजिए, है तो आगे बहुत कुछ लेकिन बस करते हैं अभी, है चलिए। वहाँ पे कौन होगा, एक किताब है शेख अब्बास कुम्मी की, मनाजिल आखरत, इससे भी पतली किताब है ये जो है, इससे पतली किताब, सबको रटा होना, सबको रटी होनी चाहिए, शौक से पढ़ो मनाजिल आखरत, शेख अब्बास कुम्मी। इसका आसान तर्जुमा यूँ किया गया है, अब आ गई है कि मरने के बाद क्या होगा, यूँ करके आई अब बाज़ार में। तो सुन्नियों की किताब थी मरने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे इन्होंने भी जब नया एडिशन आया तो उसमें ये नाम रख दिया कि मरने के बाद क्या होगा, शेख अब्बास कुम्मी की पत्ती सी किताब है, पढ़िए उसको। पहली रात में क्या होगा, दूसरी रात में क्या होगा, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। वैसे भी बहुत सारी जगहों पर हमने ये अहले हदीस पढ़ी जो आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। हम 12 इमाम चारदा मासूम की मानने वाले हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले हैं, अपने परवरदिगार सही मानो परवरदिगार को मानने वाले, जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह भी मान ले तो हम सच्चे दिल से अल्लाह भी मान लें, जो रसूलन का मान गए फौरन जिस तरह से कहा उस तरह से मान गए, जो सच्चे दिल से अल्लाह भी मान ले उसको अल्लाह ताला मरने के बाद कहो उसको सिद्दीक और शोदा का दर्जा मरम्मत फरमाएगा, उसी जैसे उसको सहूलतें मिलेंगी। उसको कुरान की आयत छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने किस कहा था, तो सूरह हदीद की आयत गालबा, ये चौथे इमाम की रवायत थी, हमने कहीं पढ़ी थी चौथे इमाम से का और जगह कहीं से पढ़ी थी कि जब सुनो और अपने लिए इंतज़ाम करो कि सारे गुनाह तो छोड़ोगे, खुद ही इंतज़ाम करो, ये अलग इंतज़ाम करो। ये क्या इंतज़ाम है, आदत बनाओ अल्लाह के लिए जलील होना दुनिया के लिए इज्जत पाने से कहीं बेहतर है। जब अल्लाह के कानून की पासदारी करोगे लोग तुम्हें कहें अरे यूँ ही बेवकूफ़ सी बोंदी सी लड़की है, तो अल्लाह के लिए जलील होना दुनिया के लिए इज्जत पाने से कहीं बेहतर है। और तुम्हारी अहमा दानी ने करबला वालों ने करके भी दिखा दिया, अल्लाह के लिए जलील हुई, अल्लाह के लिए रुसवा हुई, अल्लाह के लिए दरबदर हुई, अल्लाह के लिए पत्थरें खाई, आग फेंकी गई ऊपर से, गर्म पानी फेंका जाता था, जिनकी इनकी तौहीन की गई, फूल आना था मगर बदले में पत्थर आ रहे हैं, वे तो फूल फेंके जाते, पलके बिछा देते इनके सवारियों के नीचे, तो इस पर से जाइए। बहरहाल तो क्या कहा जा रहा है कि जब बंदा पहली रात अपनी कब्र में जाता है तो उसके साथ साथ एक मिसाली जिस्म भी होता है, सुनो तुम अपने साथ ले जाना, उसके साथ साथ उसका एक मिसाली जिस्म भी होता है, सुनो ये जिस्म कैसा है, ये किस तरह की तारीफ की है उस आदमी, जो उसको बहलाता रहता है, पूरी बरतक बहलाता है, मैदान क़यामत में बहलाता है, पूरे सरात में बहलाता हुआ निकालता हुआ ले कर जाके जन्नत दरवाजे में ले जा कर पहुँचाता है, वो कहता है लो तुझे जन्नत मुबारक हो। तो वो मैयत होती है जो उससे पूछती है कि तू है कौन, ए खुदा के बंदे तू कौन है जो मुझे कब्र से लेकर मैदान क़यामत तो पुल साथ तमाम से बहलाता हुआ जन्नत के दरवाजे पर ले, तू है कौन। उसको को पहचानता, माँ तो है नहीं हमारी, ये बाप नहीं, ना कोई हमारा भाई है, कोई रिश्तेदार कोई भी नहीं, मिसाल जिसमें पूछे तुम कौन हो, تو کہے گا میں تمہاری وہ نیکی ہوں جو تم دنیا میں مومن کے ساتھ کیا کرتے تھے. پڑھو ایک درود محمد علی محمد جن کی وجہ. میں تمہاری وہ نیکی ہوں جو تم دنیا میں مومن کے ساتھ کیا کرتے تھے. یہاں سب سے زیادہ نقصان مومنی کو پہنچاتے ہیں کیونکہ ہمارے رشتہ دار وہی جاننے والے وہی مومنوں کو نقصان پہنچاتے ہیں سب سے زیادہ. صبر نہیں کرتے کہیں پہ چھوڑو جانے دو چھوڑو جانے دو چھوڑو جانے درگزر کرو درگزر کرو جانے دو جانے دو. نہیں اللہ میزان حکمت جو کتاب ہے اس کا ایک باب میں ایک جگہ لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بہترین عبادت جو اس کو پسند ہے بہترین عبادتوں میں کیا کیا چیز سب الگ الگ کیٹیگرائز کی. اس میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ مومن کو خوش کرنے سے افضل تو پروردگار کو عبادت پسند ہی نہیں. مومن کو خوش کرنے سے افضل کوئی عبادت نہیں اللہ کے بعد کے لیے. یہ مومن کو خوش کرو یا مومن کو ناراض کرنے کے علاوہ کوئی کام آسان نہیں. ہمارے سب سے آسان کام ہے مومن کو ناراض کرنا. خوش کرو اسے تو وہ ہماری اتنی توہین کر رہا کر چھوڑو جانے دو معاف کرو. ہاں وہ کرتا رہے ہم معاف کرتے کہ ہاں معاف کرتے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا دنیا میں کہیں ہوتا ہے ایسا دنیا میں نہیں ہوتا وہ بتا رہے ہیں آپ کیجیے. چلیے یاد کر لیجیے سوال جواب میں ایک حدیث بھی یاد آ گئی تو یاد کر لیجیے. اے اللہ کے رسول ہمارے رشتہ دار ہیں ہم ان کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ بدی کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں لیکن وہ بدی کرتے ہیں. اب سوری اب ہم نے طے کیا کہ انہیں چھوڑ دیں گے. ہم نیکی کرتے ہیں وہ بدی کرتے ہیں اب ہم نے طے کیا کہ انہیں چھوڑ دیں گے تو اللہ کے رسول نے کہا پھر اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. سنو بیٹا پھر اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا تو پھر اللہ کے رسول کیا کریں ہم. صحیح تو کہا اس نے ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ بدی کرتے ہیں ہم نیکی کرتے ہیں وہ بدی کرتے ہیں ہم نے طے کیا کہ انہیں چھوڑ دیں گے. کیا اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا تو پھر ہم کیا کریں. وہ تمہارے ساتھ بھلا ہے کہ تم انہیں معاف ظلم کرے تم معاف کرو وہ تمہیں عطا نہ کرے تم انہیں عطا کرو تم درگزر کرو چھوڑ دو جانے دو معاف کرو. جب تم ایسا کرو گے تو اس کے مقابلے میں اللہ تمہارا پشت بنا بن جائے گا. کون بن رہا پشت بنا؟ اللہ. وہ قطع رحمی کرے تم ملو لیکن اب سمجھ لو کہ تمہارے مزاج ان کے ملتے نہیں تو اسی حساب سے ملو کہ جیسے ملنا چاہیے مجھے. عید بقرعید کہیں سلام دعا کرنا شادی بیاہ کے محفل ہوں ورنہ جی نہ ہو آپ چلے گئے اپنی شرکت آپ نے کی تو مولا کا ایسے بھی قول رشتہ داروں سے ملتے رہو لیکن پڑوس نہ رکھو دور رکھو ہمیشہ رشتہ دار آپس میں کوئی نہ کوئی ہاں ہماری آئی بنے میرے بڑے پیسے والی بن گئے دار شادی کیا ہوگا اس سے تو دماغ خراب ہو گیا بڑی تھی ہم کھانا ہم لوگ کیا سب مانگ کے جاتے تھے ان کے گھر ہر چیز بتائیں گے آپ کو توہین کریں گے. وہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کو مومن اس کو خوشی پہنچانے سے افضل تو کوئی عبادت نہیں. کبھی آئے گا تو موقع آئے گا تو مومن کے اوپر بھی بتائیں گے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا وہ توڑیں یعنی وہ رشتہ توڑ رہے ہیں تم جوڑو وہ ظلم کرے تم انہیں معاف کر دو وہ تمہیں عطا نہ کہ تم انہیں عطا کرو پھر اللہ ان کے مقابلے میں تمہارا پشت بنا بنائے. اللہ جس کا پشت بنا بن جائے کیا کہنا ہے پھر اللہ اکبر. تو یہ ساری چیزیں بیٹا یاد کرو اس پہ عمل کرو تبھی تمہارا فائدہ یہاں آنے کا ورنہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں لیکن نہیں ہے تب بھی فائدہ ہے لیکن عمل کرو زیادہ فائدہ پورا فائدہ لو تھوڑا فائدہ لینے کی کوشش کرو زیادہ فائدہ لو. آخری ایک حدیث سن لو زبانی اور بس بات ختم ہو جائے. مجھے کچھ سوال تو آخری حدیث سنا ہے. ارے کیا بات کر رہے ہیں پوچھے. جی سب کی ہوگی سب کی ہمارے یہاں تلقین جو پڑھی جاتی وہ کیا چیز ہے شانہ ہلا کے جو پڑھایا جاتا تلقین پڑھائی جا رہی نا پڑھائی کہتے ہیں. نہیں نہیں وہ پڑھائی جاتی جنت حق ہے دوزخ حق ہے بولے سرات حق ہے میزان حق ہے اللہ حق ہے پورے ہاں تمہارا امام بھی ہے جیسے کہ بہت ساری دعاؤں میں موجود ہے میں اللہ کے ساتھ راضی ہوا جو پالنے والا ہے ساتھ محمد کے رحمت نازل ہو ان پہ، ان کی آل پہ، ان کے نبی ہونے پہ، اسلام کے مذہب کے ساتھ، قرآن آسمانی کتاب کے ساتھ، کعبہ قبلہ کے ساتھ، علی کے ولی حسن حسین، علی فضل حسین، محمد خلفی نے کرتے کرتے آخر تک درد، یہ سب آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بعض تعقیبات نماز میں شروع میں پہلی دعا یہ رکھی ہوئی کہ روزہ نہ پڑھو، اس کو روزہ پڑھتے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ہے خبر کا پڑھانا، خبر میں یہ پڑھانا۔ اور کوئی سوال تو دیں پھر ہم جواب۔ جی آپ بسم اللہ، ایسے کوئی اچھا چلتے چلتے ایک حدیث سنا دیں تاکہ اس کے اوپر اگلی دفعہ بات کر سکیں، اور نہ کر سکیں تو آپ کہیے نہیں بات کیجیے۔ کچھ کام ابتدائیہ ہوتے ہیں بالکل، جیسے دنیا بنی حضرت آدم آئے، یہ ابتدائیہ کام ہے، تو سب کو یاد رہنا چاہیے، اہم بات ہے کہ جب دنیا بنی تو سب سے پہلے زمین پہ کون بھیجا گیا؟ حضرت آدم بھیجے گئے، ہے نا حضرت آدم۔ تو یہ ساری چیزیں یاد، جب حضرت آدم آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ہاتھ تین چیزیں بھی بھیج دیں کہ اے آدم سے کہو، جبریل آدم سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک چیز اٹھا لے، ایک چیز کو لے لے۔ وہ تین چیزیں لے کے آئے، حیا لے کے آئے، عقل لے کے آئے، اور دین لے کے آئے۔ حیا، عقل اور دین لے کے آئے، وہ کہا کہ اے آدم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس میں سے تم ایک چیز اٹھا لو۔ تو انہوں نے عقل اٹھا لیا، اور بھیا دین چھوڑ دیا، حیا چھوڑ دی، انہوں نے عقل اٹھا لیا۔ تو جب عقل اٹھا لیا انہوں نے تو جبریل نے حیا اور دین سے کہا آپ واپس چلو ہمارے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ میں عقل کے ساتھ رہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں۔ الگ یعنی جہاں عقل ہے وہیں حیا بھی ہے، وہیں دین بھی ہے، اور جہاں عقل نہیں نہ وہاں حیا ہے نہ دین ہے، یہ سب چیز نہیں۔ اور دین ہوگا کب؟ جو ہمارے پاس علم ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ عقل جو ہے کیا کام کرتی؟ جہالت سے باز رکھتی، روکتی ہے۔ عقل جہالت سے باز رکھتی، روکتی ہے۔ تو اب پوری دنیا میں جو جاہل لوگ ہیں دین، وہ عقل نہیں رکھتے، وہ نکرہ رکھتے ہیں۔ نکرا کیا چیز؟ نکرا کیا چیز؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا سے پوچھا کہ عقل کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کہا جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت حاصل کیا جائے اس کو کہتے ہیں عقل۔ تو اس نے پوچھا جو اس کے پاس تھی، یعنی معاویہ کے پاس جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ پھر وہ نکرہ تھی، عقل سے ملتی جلتی ایک چیز ہے جسے چالاکی اور مکاری کہتے ہیں، جسے دنیا حاصل کی جاتی۔ تو یہ جتنے چیز ہیں کہ عقل جو ہے جہالت سے بات رکھتی، تو ان کے پاس کیا کہ نکرہ چالاکی جسے دنیا حاصل کی جاتی، وہ چیز ہے ان لوگوں کے پاس۔ تو عقل کیا چیز ہے؟ کہ علم حاصل کرنا آخرت کا، آخرت کے بارے میں جاننا۔ ایک ایسی کلاس ہو رہی تھی، پوچھا کیا اچھا کوئی سوال نہیں بلکہ سوال پوچھنے سے پہلے ہاتھ اٹھا دیا ایک ٹائم، تو کیا دنیاوی علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ سوال۔ اب تک دینی علم حاصل کرنے تھی، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، کبھی نہیں پوچھا کہ آخرت کا علم حاصل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ سب دنیا تو سب پتہ ان کو، یہ کیا تو اب یہ ہوگا، بی ایڈ کیا ہے، سی ٹی بی ٹی کیا ہوا، اسکول میں نوکری ملے گی، یہ ہوگا، وہ سب پتہ۔ کیا دنیاوی علم حاصل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں؟ اب کیا جواب دیں؟ میں نے کہا ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آیا، اس کا جواب میں نے کہا حدیث میں دے دے۔ رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، میں کس سے کروں؟ سنیے، آپ اپنی بیٹی، اپنی بیٹی بیٹی کی کس سے کریں گے؟ ہمیں پتہ، دیکھیں مکان، دیکھیں دکان، کچھ زمانے کے تقاضے بھی اس کو پورا کر لیے۔ مین چیز ہماری دین ہے، مین چیز ہماری دین، دین نہیں تو کچھ نہیں۔ کس سے کریں؟ کہ لڑکا دیندار ہو، پہلی بار لڑکا دیندار ہو، لڑکا خوش اخلاق ہو، لڑکا بد کردار نہ ہو، اپنی بیٹی دے دو۔ کیا بات کہی؟ لڑکا دیندار ہو، لڑکا خوش اخلاق ہو، لڑکا بد کردار نہ ہو، اپنی بیٹی دے دو۔ میں نے کہا جب اس میں لڑکا دیندار ہوگا تو اس نے ایسا ہنر علم حاصل کیا ہوگا جسے دنیا کمائے، تاکہ بیوی بچوں کا خرچہ بھی تو دینا، نام نفع بھی تو دینا ہے، تو ہو گیا۔ یہ زیادہ ضروری، وہ نہیں ضروری، وہ تو خود بخود حاصل کرے گا، اس کی ضرورت ہوگی۔ وہ تو کافر و مومن دونوں حاصل کرتے ہیں، وہ کوئی کافر سے کہا تھوڑی نہیں آتا کہ علم ڈاکٹری پڑھو، تو خود ہی حاصل کرتا ہے۔ کیا سمجھے؟ अब कोई सवाल?